एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उत्तरी आयरलैंड के एक ऐसे कवि की जिनकी आवाज में मिट्टी की सोंधी गंध भी थी और इतिहास की गहरी गूंज भी। सीमस हीनी, 1995 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें। उनकी कविताओं में रोज़मर्रा की चीज़ों में जादू ढूंढने और गुजरे हुए वक्त को जिंदा महसूस कराने की कमाल की क्षमता थी। आज हम कोशिश करेंगे कि हीनी के जीवन, उनकी सबसे ज़रूरी कविताओं और उनकी विरासत के जो अहम पहलू हैं उनको समझें।
हाँ, और ये समझना दिलचस्प भी है और ज़रूरी भी, क्योंकि हीनी मतलब सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक तरह के, क्या कहें, सांस्कृतिक पुल जैसे थे, खासतौर पर उत्तरी आयरलैंड के उस मुश्किल दौर में जिसे द ट्रबल्स कहते हैं। उन्होंने जैसे उम्मीद और इतिहास के बीच एक संवाद बनाने की कोशिश की। नोबेल समिति ने भी यही कहा था ना कि वो रोज़मर्रा के चमत्कारों और जीवित अतीत को सामने लाते हैं। असल में वो साधारण चीज़ों में, खेत की मिट्टी हो या बचपन की कोई याद, उसी में इतिहास और इंसानियत की गहरी परतें देख लेते थे। कमाल की बात है।
हाँ बिल्कुल, तो चलिए पहले जरा उस जगह और उस वक्त को समझते हैं जहाँ हीनी की जड़ें थीं। 1939, काउंटी डेरी, उत्तरी आयरलैंड। मतलब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी थी और आयरलैंड खुद अंदरूनी तनाव और बंटवारे से गुजर रहा था।
जी, उनका जन्म हुआ मॉसबॉर्न नाम के एक छोटे से फार्म पर। परिवार कैथोलिक था, जो वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय था। तो सोचिए, एक तरफ खेतों का वो शांत धीमा जीवन, मौसम का आना जाना, और दूसरी तरफ 20वीं सदी की वो बड़ी राजनीतिक उथल पुथल, हिंसा का डर। ये जो दोहरापन है ना, मतलब घर का अपनापन और बाहर का वो बड़ा कभी कभी हिंसक इतिहास, यही चीज उनके लेखन का एक केंद्रीय बिंदु बनी। पुरानी गेलिक संस्कृति और ब्रिटिश शासन के बीच का जो तनाव था, वो आगे चलकर द ट्रबल्स के रूप में फटा, और यही सब माहौल उनकी कई कविताओं की पृष्ठभूमि में है।
अच्छा, और उस समय वहाँ का साहित्यिक माहौल कैसा चल रहा था? मतलब क्या कोई खास आंदोलन वगैरह था जिसमें हीनी शामिल हुए?
देखिए, आयरिश कविता उस वक्त W.B. Yeats जैसे महान कवि की बहुत बड़ी छाया से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी। पैट्रिक कैवनाग जैसे कवि थे जो रोज़मर्रा की ग्रामीण जिंदगी पर लिख रहे थे, एक नया रास्ता बना रहे थे। लेकिन हीनी की जो पीढ़ी थी, उनके लिए सबसे बड़ा सच था उत्तरी आयरलैंड का वो राजनीतिक संकट। 60 के दशक के आखिर में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ और फिर द ट्रबल्स की वो सांप्रदायिक हिंसा, इसने सब कुछ बदल दिया। इसी दौर में अल्स्टर कविता, मतलब उत्तरी आयरलैंड की कविता का एक ज़बरदस्त उभार हुआ। हीनी उसमें एक बहुत अहम आवाज़ थे। बेलफास्ट ग्रुप था एक, जिसमें माइकल लॉन्गले, डेरिक महोन जैसे और भी कवि थे। वो एक मंच बन गया जहाँ कवि इस बात से जूझ रहे थे कि इस हिंसा के दौर में लिखें तो कैसे लिखें, ऐसी भाषा कैसे गढ़ें जो गवाही भी दे पर सिर्फ नारा ना बन जाए।
तो इस मुश्किल पृष्ठभूमि से निकलकर खेतों से नोबेल तक का उनका सफर, ये कैसे तय हुआ? परिवार का क्या रोल रहा इसमें?
वो अपने माता पिता के 9 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके पिता पैट्रिक हीनी मवेशियों का व्यापार करते थे। उनका जीवन जमीन से, उसके यथार्थ से जुड़ा था, बहुत ठोस। और माँ मार्गरेट कैथलीन मैकिन, वो थोड़े शहरी पृष्ठभूमि की थी। उनका परिवार लिनन मिलों के काम से जुड़ा था।
बिल्कुल।
तो एक तरफ पिता की वो खामोश जमीनी दुनिया थी और दूसरी तरफ माँ का शब्दों और भाषा से लगाव। ये दोनों असर उनकी शख्सियत में और फिर उनकी कविता में भी गहरे उतरे। उनकी शुरुआती तालीम ने भी इसमें मदद की।
तालीम की बात आई तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके बचपन में एक दुखद हादसा हुआ था जिसने उन पर बहुत गहरा असर डाला।
हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना थी। जब वो स्कूल में थे, बोर्डिंग स्कूल में, उनके 4 साल के छोटे भाई क्रिस्टोफर की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे का उन्होंने बहुत ही मार्मिक और बहुत संयत तरीके से जिक्र किया है अपनी एक मशहूर कविता में, मिड टर्म ब्रेक। वो कविता पढ़कर लगता है कि कितनी कम उम्र में उन्हें दुख और शब्दों के बीच का वो गहरा रिश्ता शायद समझ आने लगा था। फिर उन्हें डेरी के कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल सेंट कॉलम कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिली। इसी वजह से वो पहली बार फार्म से दूर निकले, क्लासिकल शिक्षा की दुनिया में आए। इसके बाद क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में अंग्रेजी साहित्य पढ़ा। वहीं उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की। शुरू शुरू में इनसर्टस नाम से लिखते थे। मजे की बात है, इनसर्टस का मतलब होता है अनिश्चित। शायद उस दौर की अनिश्चितता और उनकी अपनी अंदरूनी तलाश को दिखाता ये नाम। और वहीं यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात मैरी डेवलिन से हुई, जो खुद भी एक लेखिका थी। वो बाद में उनकी पत्नी बनी और जीवन भर उनकी सबसे करीबी साथी और आलोचक रही।
और फिर जब द ट्रबल्स का दौर शुरू हुआ, जाहिर है कैथोलिक पृष्ठभूमि के कवि के तौर पर उनकी स्थिति तो और मुश्किल हो गई होगी। क्या इसीलिए 1972 में वो दक्षिण आयरलैंड चले गए थे?
हाँ बिल्कुल, 1966 में उनकी पहली किताब आई डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट और उससे उन्हें काफी पहचान मिली। लेकिन जैसे जैसे द ट्रबल्स बढ़ते गए, हिंसा बढ़ती गई, तो एक सार्वजनिक कैथोलिक आवाज होने का दबाव भी बढ़ा, नैतिक जिम्मेदारियां भी बढ़ी। और 1972 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपने परिवार के साथ दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड चले गए। ये एक बड़ा कदम था और हाँ, कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए।
सवाल क्यों?
कुछ लोगों को लगा कि ये उत्तर के संघर्ष से एक तरह का मुंह मोड़ना है या पलायन है। लेकिन हीनी के लिए शायद ये अपनी कला और अपने परिवार के लिए एक जरूरी स्पेस बनाने का तरीका था। इसके बाद तो उनका करियर और फैला। उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाया, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे। वो एक ऐसी सांस्कृतिक हस्ती बन गए जिनकी बात अटलांटिक के दोनों तरफ सुनी जाती थी। जीवन के आखिरी सालों में भी वो लिखते रहे। 2006 में उन्हें एक स्ट्रोक आया था। उससे उभरने के बाद उन्होंने ह्यूमन चेंज जैसा गहरा संग्रह लिखा और फिर 30 अगस्त 2013 को डबलिन में अचानक उनका निधन हो गया। कहते हैं अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी मैरी को एक आखिरी संदेश भेजा था, लैटिन में नोली तिमरे।
नोली तिमरे,
इसका मतलब
डरो मत।
वाह,
अच्छा चलिए अब उनकी रचनाओं पर आते हैं। डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट से तो शुरुआत हुई, उसमें क्या खास था? और वो कविता डिगिंग, उसका जिक्र भी बहुत होता है।
डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट इसलिए खास थी क्योंकि उसमें बचपन की यादें, प्रकृति के अनुभव, गाँव का जीवन, ये सब एक अद्भुत संवेदी ताजगी के साथ आया था। मतलब आप शब्दों को पढ़ते हुए चीजों को महसूस कर सकते हैं, जैसे मेंढक के अंडों की वो चिकनाहट और आवाज, या ताजी खुदी मिट्टी की गंध। ब्लैकबेरी पिकिंग जैसी कविताएं हैं जिसमें बचपन की वो मासूमियत और फिर अनुभव से मिलने वाली थोड़ी कड़वाहट दोनों साथ साथ हैं। और डिगिंग, हाँ वो तो जैसे उनका घोषणा पत्र ही थी। उसकी वो पहली पंक्तियां बहुत मशहूर हैं। बिटवीन माई फिंगर एंड माई थम द स्क्वाट पेन रेस्ट स्नग एज अ गन।
मेरी उंगली और अंगूठे के बीच छोटी कलम टिकी है, बंदूक की तरह संधि हुई।
बिल्कुल, इसमें वो यही कह रहे हैं कि जैसे उनके पिता और दादा फावड़े से जमीन खोदते थे, वैसे ही वो अपनी कलम से खुदाई करेंगे। किसकी खुदाई? अनुभव की, स्मृति की, इतिहास की गहराइयों की।
क्या कमाल की छवि है, कलम जैसे फावड़ा। अच्छा, और फिर वो दौर आया जब उन्होंने सीधे द ट्रबल्स पर लिखना शुरू किया, खासकर नॉर्दर्न आयरलैंड संग्रह और वो बोग पोएम्स। ये क्या चीज थी?
हाँ, विंटरिंग आउट 1972 और फिर खास तौर पर नॉर्थ 1975, इन संग्रहों में उन्होंने बढ़ती हुई हिंसा पर फोकस किया। बोग पोएम्स इसी नॉर्थ संग्रह का हिस्सा है और शायद सबसे ज्यादा चर्चित और हाँ थोड़ी विवादास्पद भी। हीनी ने डेनमार्क और आयरलैंड की जो दलदली जमीन होती है ना, पीटलैंड या बोग्स, उनमें सदियों से दबे हुए लौह युग के शव देखे थे। वो एकदम संरक्षित मिलते हैं वहाँ।
हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में।
तो हीनी ने इन प्राचीन शवों को एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया। किसके लिए? उत्तरी आइलैंड की उस वक्त की हिंसा की गहरी, जैसे कोई कबीलाई जड़ें हों, उनको दिखाने के लिए। जैसे ये जो पुराने जमाने में बलि चढ़ाए गए या सजा पाए हुए लोग हैं, वो आज की हिंसा के शिकार लोगों के ही पूर्वजों। ये इतिहास और वर्तमान के बीच एक बहुत शक्तिशाली, लेकिन हाँ थोड़ा बेचैन करने वाला रिश्ता बनाने की कोशिश थी।
लेकिन इसकी आलोचना भी हुई थी कि ये शायद हिंसा को कुछ ज्यादा ही मिथकीय या अनिवार्य जैसा बना देता है।
बिल्कुल, कुछ आलोचकों को यही लगा कि ये तरीका हिंसा को इतिहास की एक अटल नियति की तरह पेश करता है, या फिर उसे एक अजीब किस्म का सौंदर्य दे देता है। ये एक बहुत जरूरी बहस थी उस वक्त, और इसने हीनी के काम को और गहराई से समझने में मदद की, और ये भी कि एक कवि की राजनीतिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं। हीनी खुद भी इन सवालों से हमेशा जूझते रहे।
तो क्या वो हमेशा ऐसे ही बड़े ऐतिहासिक रूपों को और मिथकों में ही लिखते रहे?
नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे नॉर्थ के बाद उनका संग्रह आया फील्ड वर्क 1979, उसमें वो नॉर्थ के उस बड़े सार्वजनिक मिथक वाले अंदाज से हटकर ज्यादा निजी, ज्यादा शोकपूर्ण कविताओं की तरफ मुड़े। उसमें दोस्तों पर लिखी कविताएं हैं, प्रेम कविताएं हैं, और राजनीतिक हत्याओं से उपजे व्यक्तिगत दुख पर भी कविताएं हैं। फिर एक और बहुत अहम किताब आई स्टेशन आइलैंड 1984। ये एक लंबी, बहुत महत्वाकांक्षी कविता है, कुछ कुछ दांते की डिवाइन कॉमेडी के अंदाज में। इसमें कवि जैसे एक तीर्थ यात्रा पर निकलता है अपनी स्मृति में और अपने अतीत के भूतों से मिलता है।
भूतों से मतलब?
मतलब उन लोगों की यादों से जो गुजर चुके हैं, कुछ द ट्रबल्स के शिकार लोग, कुछ दूसरे लेखक जैसे जेम्स जॉयस। और इन मुलाकातों के जरिए वो कला की भूमिका पर, उसकी सीमाओं पर, उसकी जिम्मेदारियों पर बहुत गहरे सवाल उठाते हैं।
अच्छा, और फिर उनका वो बेओवुल्फ का अनुवाद, उसको तो जैसे एक अलग ही पहचान मिली। वो सिर्फ एक अकादमिक अनुवाद नहीं था क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक पूरी सांस्कृतिक घटना थी। 1999 में जब वो आया, बेओवुल्फ पुरानी अंग्रेजी का एक महाकाव्य है, बहुत पुराना। उन्होंने उसे एक ऐसी भाषा दी जो जोरदार थी, लयबद्ध थी और जिसमें हल्का सा आयरिश लहजा भी था। नतीजा ये हुआ कि वो किताब अकेडमिक हलकों से निकलकर बेस्टसेलर लिस्ट में पहुंच गई।
अरे वाह।
हाँ, उसने एक बहुत पुरानी कहानी को लाखों नए पाठकों के लिए जिंदा कर दिया। ये उनकी भाषा की उसी ताकत का सबूत था जिसे वो खुद मस्क्यूलर ब्रोगिश कहते थे, मतलब मांसल, थोड़ी देहाती, जमीन से जुड़ी हुई। और फिर उनका जो आखिरी संग्रह था, ह्यूमन चेन 2010, वो मृत्यु, स्मृति और रिश्तों के जो नाजुक धागे हमें जोड़े रखते हैं, उन पर एक बहुत ही परिपक्व और दिल को छू लेने वाला चिंतन है।
तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो साहित्य में हीनी का सबसे बड़ा, सबसे स्थायी योगदान क्या माना जा सकता है? भाषा की ताकत तो है ही, उसके अलावा?
हाँ, भाषा की वो ठोस, महसूस की जा सकने वाली गुणवत्ता तो है ही। दूसरा, मेरे ख्याल से उन्होंने राजनैतिक हिंसा जैसी बहुत मुश्किल और दर्दनाक चीज को कविता में कैसे कहा जाए, इसका एक नया रास्ता दिखाया। बोग पोएम्स पर भले ही बहस हुई हो, पर उन्होंने द ट्रबल्स को समझने के लिए गहरा, ऐतिहासिक और मिथ्यकीय फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने हिंसा को सिर्फ एक तात्कालिक घटना की तरह नहीं देखा, बल्कि इतिहास में बार बार उभरने वाले एक पैटर्न की तरह देखा।
मतलब उन्होंने कला और राजनीति के बीच वो जो एक मुश्किल संतुलन होता है, उसे साधने की कोशिश की, जिसे अंग्रेजी में पोएट ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं, यानी विवेकशील कवि।
हाँ बिल्कुल, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण बने। उन्होंने कभी प्रोपेगेंडा करने वाले कवि बनना मंजूर नहीं किया, लेकिन जो सच था, जो गवाही देनी थी, उस नैतिक जिम्मेदारी से वो कभी पीछे भी नहीं हटे। उनकी कविताएं बार बार ये सवाल पूछती हैं कि मुश्किल वक्त में कला क्या कर सकती है और शायद क्या नहीं कर सकती है। वो आयरिश लोक परंपरा, अंग्रेजी साहित्य का कैनन और दुनिया भर का साहित्य, इन सबके बीच एक पुल की तरह भी थे। इन सबको उन्होंने अपनी कविता में बड़ी सहजता से मिलाया, और बियोवुल्फ का अनुवाद दिखाता है कि कैसे एक पुरानी, भूली बिसरी परंपरा को भी नई ऊर्जा दी जा सकती है।
और उनकी विरासत आज कितनी जिंदा है। आयरलैंड में तो उन्हें इतना प्यार मिला कि लोग उन्हें प्यार से फेमस सीमस कहने लगे थे। ये किसी कवि के लिए बहुत बड़ी बात है।
हाँ, बहुत बड़ी बात है। और उनकी विरासत यही है कि उन्होंने कविता को अकादमिक सेमिनारों और किताबों के अलमारियों से निकालकर आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बना दिया। आयरलैंड में तो वो सचमुच एक घरेलू नाम थे, और कवियों की जो बात की पीढ़ियां आईं, न सिर्फ आयरलैंड में बल्कि पूरी दुनिया में, उन पर हीनी का बहुत गहरा असर है। खासतौर पर इस बात का कि कैसे अपनी जगह, अपनी मिट्टी से जुड़े अनुभवों को इतनी गहराई से लिखा जाए कि वो सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए मायने रखने लगें।
उनकी काम की जो आलोचना हुई थी, जैसे नॉर्थ संग्रह के मिथिकीकरण पर, क्या उसने उनकी विरासत पर कोई असर डाला?
आलोचना ने बहस को जरूर गहरा किया। उसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हिंसा के बारे में कैसे लिखा जाए, मिथक का इस्तेमाल कहाँ तक ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने हीनी की अहमियत को कम किया, बल्कि शायद उनकी जटिलता को और उभारा। आज भी उनका बेओवुल्फ अनुवाद एक स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत उनका वो गहरा मानवतावाद है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में अक्सर निराशा, सिनिज्म हावी रहता है, हीनी का ये मानना था कि कविता जीवन को साफ कर सकती है, अ क्लैरिफिकेशन ऑफ लाइफ, कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी करुणा, जुड़ाव और इंसानियत के गरिमा के जो पल होते हैं, उन्हें सहेज सकती है, उन्हें दर्ज कर सकती है।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हुए, जैसे उनके नोबल भाषण से, या फिर वो नाटक द क्योर एट ट्रॉय से।
हाँ, नोबल भाषण में उन्होंने वो बात कही थी, वॉक ऑन एयर अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट,
अपने बेहतर विवेक के खिलाफ हवा पर चलो।
जी, ये कल्पना की, उम्मीद की जो बदलने वाली ताकत होती है, उसमें उनके विश्वास को दिखाता है। और द क्योर एट ट्रॉय, जो असल में सोफोकल्स के एक ग्रीक नाटक का रूपांतरण था, उसकी वो पंक्तियां तो जैसे एक मंत्र बन गईं, खासकर आयरलैंड में शांति प्रक्रिया के संदर्भ में।
हिस्ट्री सेज डोंट होप ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, बट देन वंस इन अ लाइफ टाइम द लॉन्ग्ड फॉर टाइडल वेव ऑफ जस्टिस कैन राइज अप एंड होप एंड हिस्ट्री राइम।
इतिहास कहता है, कब्र के इस पार उम्मीद मत करो, लेकिन फिर जीवन में एक बार न्याय की वो लहर, जिसका इंतजार था, उठ सकती है, और तब उम्मीद और इतिहास में तुक मिल सकती है।
बिल्कुल, ये पंक्तियां दिखाती हैं कि कैसे सबसे अंधेरे वक्त में भी बदलाव और सुलह की उम्मीद जिंदा रह सकती है।
और द ट्रबल्स के उस माहौल पर उनकी कोई सीधी तीखी टिप्पणी?
हाँ,
उनकी एक कविता है, व्हाटएवर यू से नथिंग। उसका शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है।
और उसकी टेकलाइन है,
ऑफ द वी सिक्स आई सिंग, वेयर टू बी सेव्ड यू ओनली मस्ट सेव फेस, एंड व्हाटएवर यू से नथिंग। मैं उन छोटे छह यानी उत्तरी आयरलैंड के छह काउंटीज की गाथा गाता हूँ, जहाँ बचने के लिए तुम्हें बस अपना चेहरा बचाना है और तुम जो भी कहो असल में कुछ नहीं कहते।
ये उस दौर की घुटन, डर और चुप्पी साध लेने की जो संस्कृति थी, उस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है।
हेनी के बारे में कुछ और रोचक बातें, क्या उनकी कविताओं पर कोई फिल्म वगैरह बनी है?
रोचक बातों में एक तो यही कि उनका शुरुआती छद्म नाम इंसर्टस था, यानी अनिश्चित। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना ये उनकी वैश्विक पहचान का एक बड़ा हिस्सा था, और उनके बियोवुल्फ अनुवाद की जो व्यावसायिक सफलता थी वो किसी भी कवि के लिए, खासकर उस जमाने में, वाकई अभूतपूर्व थी। जहां तक रूपांतरण की बात है, देखिए, उनकी कविता का सीधा सीधा कहानी बनाकर फिल्म या नाटक बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी असली जान तो भाषा के संगीत में है, उसकी बनावट में है, उसके एहसास में है।
हाँ, ये बात तो है।
लेकिन जैसा हमने जिक्र किया, उनका वो नाटक द क्यूरेट क्रॉय बहुत प्रभावशाली रहा। वो सोफोकल्स के नाटक फिलोक्टिटिस का रूपांतरण था, लेकिन आयरलैंड के संदर्भ में उसके जो विषय थे, जिद, पुराने घाव और सुलह की जरूरत, वो बहुत गहरे जाकर लगे। उसे कई लोगों ने शांति प्रक्रिया का गान जैसा माना। इसके अलावा बीबीसी ने उन पर बहुत अच्छे वृत्तचित्र बनाए हैं, और कुछ संगीतकारों ने उनकी कविताओं को संगीत भी दिया है।
तो अंत में आज की सारी बातचीत से सीमा सीनी से हम क्या सीख सकते हैं? उनकी कविता आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या लगता है?
मेरे ख्याल से हीनी का काम हमें सबसे बड़ी बात यही दिखाता है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़कर, अपनी मिट्टी से, अपने खास निजी अनुभवों से जुड़कर भी आप सार्वभौमिक सत्य तक पहुंच सकते हैं। उनकी कविता जैसे हमसे पूछती है, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वो खेत में आलू खोदने जैसा साधारण काम हो, या बचपन की कोई भूली बिसरी याद हो, या रिश्तों की कोई छोटी मोटी उलझन, क्या हम उनमें वो गहरे अर्थ, वो जुड़ाव खोज सकते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ें, अपने इतिहास से जोड़ें और खुद अपनी इंसानियत से जोड़ें?
हाँ।
आज की दुनिया जो इतनी तेज रफ्तार है, इतनी खंडित है, अक्सर हम अपनी जड़ों से कटे हुए महसूस करते हैं। ऐसे में शायद ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि अपनी जमीन पर पैर जमाए रखकर भी सितारों तक कैसे पहुंचा जाए। हीनी हमें इसका एक रास्ता दिखाते हैं अपनी कलम से।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।